पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक श्लोक रिपीटेशन कीजिए। श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वह अवाचि नारदो भीष्णं कृष्णोपासं लालस गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वह अवाचि नारदो भीष्णं कृष्णोपासं लालस गोविंद गोविंद के श्री कृष्ण के भुज गुप्तायाम उनके भुजाओं से सुरक्षित द्वारवत्याम द्वारिका में कुरुद्वह हे कुरुकुल नंदन महाराज परीक्षित आवाज से आया करते थे आकर रहा करते थे नारद देवर्षि नारद अभिष्णम बारंबार कृष्ण कृष्ण के उपासन लालसा उपासना की लालसा से सबसे पहले हम श्री भगवान के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे बड़े आभार के पात्र श्री भगवान हैं जिनकी कृपा से कोई भी जीव उनके विषय में बोलना सुनना और स्मरण करना संभव हो सकता है। तो श्री भगवान हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा किए जिसे आज यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ हमें कहने का और आपको सुनने का। तो मुख्य रूप से हम सास स्वरूप प्रभु और इनके टीम का भारी हूँ जो मुझको अत्यंत आग्रह और सम्मान पूर्वक निमंत्रित किए भगवान के विषय में सुनने की लालसा व्यक्त करते हैं और हमें खुला अवसर दिए हैं कि आपको जब कभी भी अवसर हो तो हमें सूचना कर दें आ सकते हैं। कोई टाइम बाउंड भी नहीं है जब हमारी इच्छा हम आ सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उन्नत भक्तों का यही लक्षण है मत चेता मत गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च मेरे विषय में भक्त लोग कहते सुनते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका प्राण, उनकी सभी इंद्रियां मुझ में लगी रहती है, मेरे प्रति समर्पित है। तो ये कहते सुनते हैं, उसके पीछे कारण है कि वो मुझ में आसक्त है और एक दूसरे को मेरे विषय में प्रबोध कराते हैं, बताते हैं। यहाँ बहुत सीनियरिटी जूनियरिटी की बात नहीं है, जो कह सकता है वो कहता है, छोटा हो बड़ा हो उसको बड़े प्रेम से लोग सुनते हैं। यह भागवती परंपरा है, श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सूत गोस्वामी जैसा एक युवक वक्ता है और शौनक गोस्वामी जैसे वाइस चांसलर, जिनके साथ 10,000 शिष्य चलते थे, 88,000 ऋषियों के जो गुरु हैं, ऐसे लोग जो एक विश्वविद्यालय चलाने में समर्थ थे, साधारण टीचर नहीं वो लोग थे, वे लोग बड़ी विनम्र भाव से बैठकर सुनते हैं। अथवा महाराज परीक्षित की सभा में एक से एक ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि उपस्थित थे। एक 16-18 वर्षीय युवक सुखदेव व्यास नंदन आकर उस सभा को संबोधित किए, सभी लोग बैठकर सुने। यह है हमारी परंपरा। तो ऐसे यहाँ कौन सी कथा की जाए, इस पर विचार बहुत पहले से नहीं किया गया। एक दिन सास स्वरूप प्रभु पूछे कि प्रभु जी किस विषय पर कथा करेंगे, उसको कुछ तो लिखना पड़ेगा, इनविटेशन देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, भागवत धर्म की चर्चा करेंगे। भागवत धर्म श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा प्रसंग है जिसको सुखदेव गोस्वामी अपनी इच्छा से प्रस्तुत किए हैं। आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता और भागवत प्रश्नोत्तर में व्यक्त हुआ है, प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर है। भगवद गीता के प्रश्न करता है अर्जुन और वक्ता है श्री भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के अनेक वक्ता श्रोता हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमको भागवत प्राप्त हुआ नैमिषारण्य से, उसके श्रोता हैं शौनक आदि ऋषि और वक्ता हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा पर अनेक वक्ताओं को प्रस्तुत किया है, क्योंकि यही भागवती परंपरा है। अपनी बातें कहने का फैशन नहीं है, अपने से पूर्व आचार्यों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित की सभा में गंगा के तट पर जो सुखदेव गोस्वामी कथा किए, उसको सीधे प्रस्तुत कर दिया है, एकदम हूबहू एज इट इज। इस प्रकार महाराज परीक्षित विविध प्रश्न किए हैं श्री भगवान के विषय में। खास करके दशम स्कंध में प्रारंभ में, जब हम नवम स्कंध के लास्ट में चंद वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के विषय में चर्चा किए, अति संक्षेप में 2-4 श्लोकों में, तो दशम स्कंध के प्रारंभ में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र कहा, किसी को संक्षेप में, किसी को विस्तार से, लेकिन कृष्ण कथा को इतना संक्षेप में न हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके कृष्ण कथा को विस्तार से कहिए। अपने श्रवण के औचित्य को भी व्यक्त किए हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से हमारा निजी लगाव है, संबंध है। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितामहों को श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में विजय दिलाया। बाहर सम्रांगण में बड़े बड़े योद्धाओं से विजय दिलाया और सब तो सब मुझे माता के गर्भ में द्रोणी के ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की। केवल अपनी ही बात नहीं है, जितने भी प्राणी हैं सबके हृदय में श्री भगवान परमात्मा के रूप में रहकर सबका पालन करते हैं। श्री भगवान से सबका संबंध है, उनकी कथा अवश्य कहिए। और हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति, चाहे संसार के भोगने वाला विषयी हो अथवा विरक्त हो अथवा भगवान का भक्त हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति भगवान का भजन करेगा। केवल जो आत्महत्यारा है, जो अपने हित की परवाह नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को छोड़कर, तो आप अवश्य कहिए। उसी क्रम में उन्होंने अनेक प्रश्न किया कि श्री भगवान बलराम एक ही शरीर से दो माताओं के पुत्र कैसे हुए? आपने अभी रोहिणी के पुत्रों में भी बलराम का नाम लिया और देवकी के पुत्रों में भी, बिना शरीर परिवर्तन किए दो माताओं के पुत्र कैसे हुए श्री बलराम जी? और भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में अवतार लेकर फिर ब्रज में क्यों चले गए और वहां कितना दिनों तक रहे? और भगवान अपने खास सगे मामा का, अपने माई माँ के भाई का वध क्यों किए, इत्यादि अनेक प्रकार। फिर भगवान द्वारिका में कितना दिन रहे, कितना विवाह किए, बहुत सारे प्रश्न कर लिए। सारा प्रश्न करने के बाद लास्ट में कहते हैं महाराज परीक्षित, एतद् अन्यश्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तो मर्हसि सर्वज्ञ सदधानाय विस्तृतम्। मैंने जो कुछ पूछा है आपको अगर उचित लगे तो इसका उत्तर दीजिएगा, अथवा मेरे प्रश्न के अतिरिक्त आपके दृष्टि में जो अच्छा लगे वो कहिएगा। एतद् ये तो मैं जो पूछ दिया ये तो कहिए ही, लेकिन अन्यश्च सर्वम में मुने कृष्ण विशिष्टितम्, कृष्ण की और कुछ विशिष्ट लीला हो तो उसको भी आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीमा में हैं, जो मैं पूछ दिया वही कहिए, आपके दृष्टि में जो अच्छा लगे उसको कहिए। वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, हमारा हित किस में है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी बुद्धि से पूछ दिया। शब्द धानाय विस्तृतम, इतना है कि मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मेरे जैसे श्रद्धालु को विस्तार से मेरे हित का उपदेश आप करने में स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। सुनिए, आप बैठिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बैठना सुनना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इस प्रसंग के उपक्रम में, यस, और भी कई टीकाकार लिखते हैं कि शायद यही कारण है कि यहाँ एकादश स्कंद के दूसरा अध्याय बिना जिज्ञासा के सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे, यहाँ कोई जिज्ञासा नहीं हुआ है और चार अध्यायों में कथा किए। यह सुखदेव गोस्वामी की अपनी पर्सनल फेवरेट विषय है। यहाँ महाराज परीक्षित के प्रश्न की सीमा में नहीं है, यहाँ अपनी इच्छा से जब गुरुदेव, कोई अत्यंत कृपालु गुरु किसी शिष्य को अपनी इच्छा से कुछ हित के उपदेश करे, उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिष्य अपनी समझ अपनी सीमा के अनुसार ही प्रश्न कर सकता है। हो सकता है कि उसका प्रश्न लिमिटेड हो, अपने लिमिटेड ज्ञान से प्रभावित हो, लेकिन उसका हित किस में है वह परम करुण गुरुदेव ही जानते हैं। तो शायद सुखदेव गोस्वामी यह प्रसंग अपनी इच्छा से प्रारंभ किए, क्योंकि यह परीक्षित के लिए सबसे हितकारी प्रसंग है, ये फेवरेट विषय है। और केवल परीक्षित के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए, सभी भक्तों के लिए, इसलिए यह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। इस प्रसंग में चार अध्याय हैं, लगातार 2, 3, 4, 5 ये 5 अध्याय सुखदेव गोस्वामी अपनी इच्छा से प्रस्तुत किए और इसमें एक बहुत सुंदर संवाद प्रस्तुत किए हैं और संवाद है निमी महाराज और नव जोगेश्वरों का। निमी महाराज विदेह राज वहां मिथिला में राजा हुआ करते थे, वहां के सभी राजाओं को विदेह कहा गया, सभी को जनक कहा गया, अलग अलग नाम था। तो निमी महाराज राजा थे, एकदम प्रारंभ में सतयुग के प्रारंभ की कथा है। ये इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे निमी महाराज, एकदम प्रारंभिक अवस्था में। तो इन्होंने प्रश्न किया है अपने एक सत्र में, यज्ञ में, वहां भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र उपस्थित होकर अचानक उपस्थित हुए, कथाएं आएगी। और वे लोग बड़े सम्मान पूर्वक उस यज्ञ में भाग लिए, उनका सम्मान किया गया और 9 से एक एक प्रश्न किए हैं महाराज निमी। उसी प्रश्नोत्तरी को सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप क्रमशः एक एक श्लोक सुनेंगे। यह प्रसंग द्वारिका से प्रारंभ होता है। द्वारिका में देवर्षि नारद आया करते थे और एक दिन वसुदेव जी के महल में चले गए। वसुदेव जी उनसे कुछ जिज्ञासा किए तो वसुदेव जी के जिज्ञासा के उत्तर में देवर्षि नारद ने निमी और नव जोगेश्वर संवाद को प्रस्तुत किया है। यह है भूमिका। अब हम श्लोक पर आते हैं। श्री शुक उवाच गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरु द्वह अवाच्य नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लाल सह। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे कुरुद्वह, हे कुरुकुल नंदन, हे कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज परीक्षित, नारद कृष्ण उपासन लालसा, नारद श्री कृष्ण की उपासना की लालसा से। उपासना का अर्थ है उप और आसन, दो शब्द है। उप माने निकट, आसन माने रहना, बैठना। श्री कृष्ण के निकट बैठना, उनसे बातचीत करना, उनको देखना, उनके विषय में सुनना, उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाना इत्यादि, ये है उपासना। तो गोविंद भुज गुप्तायाम, वह द्वारिका गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित थी। द्वारवात्याम द्वारिकापुरी गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित थी, मतलब वहाँ प्राकृत कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। स्पेशल वैकुंठ की वातावरण, वहाँ प्राकृत हलचल या उहापोह कोई टेंशन बाजी नहीं, और न वहाँ दक्ष का श्राप काम करता था। कुछ लोग कहते हैं, एक प्रश्न हो सकता है कि वह गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित था इसलिए कुछ दिन रेस्ट करने के लिए आते थे नारद जी क्या? आवासी नारदो भीष्णम, नारद जी बार बार आते थे और द्वारिका में रुकते थे, तो वहां पर घंटा दो घंटा की बात नहीं, महीनों रह सकते हैं। वहां दक्ष का श्राप काम नहीं करता था। दक्ष श्राप दिया था नारद जी को, कहीं भी दो घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी सन्यासी बना दिए दो बार में। 10,000 का एक ग्रुप था और 1,000 का एक सुबलास और हरियश। तो ये हरियश एक ग्रुप का नाम था, एक का सुबलास। तो ऋषि दक्ष चिढ़ जग गया था और नारद जी को श्राप दे दिया, और वह श्राप नारद जी के लिए वरदान सिद्ध हो गया। कहीं किसी स्थान पर कोई साधु टिक जाए तो हो सकता है उसका मन संसारिक वातावरण में आसक्त हो जाए। रमता जोगी बहता पानी प्रसिद्ध है, घूमता रहे जैसे पानी बहने वाला शुद्ध रहता है, वैसे रमने वाला साधु पवित्र रहता है। तो नारद जी घूमते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, वो 2-4-5 मिनट में प्रीचिंग कर देते हैं। तो आया करते थे द्वारिका में रहने के लिए। तो संभावना की जा सकती है कि क्या दक्ष के श्राप का कोई वहां प्रतिबंध नहीं था तो रेस्ट करने आते थे? तुरंत कहते नहीं नहीं, कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा से आते थे। और अवासित नारदो भीष्णम, अभीष्णम का अर्थ है श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रस्थापितोपि पुनः पुनः अवासित इत्यर्थ। उनको भेजा जाता था, भगवान कहते थे आप प्रीचर होकर यहाँ टिक गए, अरे आप जाइए लोगों की दुर्दशा पर विचार कीजिए, लोगों को प्रीचिंग कीजिए। प्रस्थापितोपि भेजने के बाद भी पुनः पुनः अवासित इत्यर्थ, बार बार आते थे। ननु नारदस्य दक्षादि सापन नैकत्र वास संभवति इत्य संकयाया। क्या नारद जी दक्ष के श्राप की मुक्ति के लिए आया करते थे? श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाए हैं, क्यों आते थे? भेजने के बाद भी फिर आते थे, इसका कारण क्या था? क्या दक्ष के श्राप से कुछ रेस्ट करने आराम करने आते थे? नहीं नहीं, इसी की शंका में नीचे कहते हैं गोविंद भुज गुप्ता यामिति काल वचन सापादे का कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए न तस्यम सापादे प्रभाव इत्यर्थ। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ कोई साप का प्रभाव नहीं था, तो फिर क्यों आते थे? उसके लिए आते थे? तो कहते नहीं, कृष्णोपासन लालसा, कृष्णोपासने लालसा औत्कंठ्यम जस्य स यदवा कृष्णस्य उपसमीपे आसने स्थितौ लालसा जस्य। जिनको श्री कृष्ण को देखने की, उनके विषय में सुनने की, उनसे बातचीत करने के अवसर प्राप्त करने के लिए आते थे, यह उनका लक्ष्य था। तो यहाँ कृष्णोपासन लालसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग जनरल कथाएं सुनते हैं वैसी कथा नहीं की जाएगी, एक एक श्लोक पर विचार किया जाएगा। श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद भागवतम वह पेय है, वह खीर है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले गए हैं, काजू पिस्ता बादाम आदि, और अचानक उठाकर निगल जाएंगे तो नहीं मजा आएगा। उसको एक घूंट पीजिए और उस काजू पिस्ता को दांत से दबाइए, तो उसको चबा चबा कर तब पीजिए, तब उसका टेस्ट अनुभव होगा। तो भागवतम एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, एक एक श्लोक में सिद्धांत है, तो उस पर विचार करके उसको चबाते हुए उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम रसा स्वादन अर्था स्वादन, तो उसके अर्थ का स्वादन करते हुए। तो यहाँ कृष्णोपासन लालसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण की उपासना जीव का सर्वविध दक्षता और सफलता का द्योतक है। जो जीव कृष्ण की उपासना करता है इसका अर्थ वह सौभाग्यशाली है, वह परम सौभाग्यशाली है कृष्ण की उपासना करता है। इसलिए अगले श्लोक में एक श्लोक की कथा कहकर दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कमेंट्री करने लगे। अब देखिए कथा कहने का स्टाइल, कहते हैं को नुराजन इंद्रिवान मुकुंद चरणाम भुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोतमयी। कहते हैं को नुराजन इंद्रिवान, हे राजन ऐसा कौन इंद्रिय वाला व्यक्ति है जिसके पास आँख नाक कान हाथ पैर सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वह अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है, लूला लंगड़ा नहीं है, सारे अंग ठीक है, वह क्यों नहीं भगवान का भजन करेगा? कौन राजन इंद्रिवान मुकुंद चरणाम भुजम न भजेत, मुकुंद के चरण कमलों की उपासना क्यों नहीं करेगा? अर्थात उसे करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं करने पर बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, पता नहीं कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। योजना बनाने से नहीं काम चलेगा, इंद्रियां ठीक से काम कर रही है, बस बेस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति है भजन करने के लिए। यहाँ भजन की कोई दूसरी योग्यता नहीं है, उसको सुनने की क्षमता हो, बहरा ना हो, तो वह कथा में बैठ सकता है, बस इतना ही। यहाँ पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं, भगवान के विषय में सुनने में कान काम कर रहा है तो सुन सकता है, आँख काम कर रहा है तो भगवान को देख सकता है। यही भजन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो सुन सकता है, जीभ ठीक से काम कर रही है, गूंगा नहीं है तो बोल सकता है कृष्ण गोविंद हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्रियवान व्यक्ति भजन के लिए योग्य है। कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोतमयी। अगर यह कहा जाए अभी क्या जल्दी है, बाद में भजन कर लेंगे, कहते हैं बाद में सर्वतः मृत्यु, भले किसी गांव में मंदिर हो या ना हो लेकिन मरघट निश्चित है। हो सकता है कि गांव भर के लोग नास्तिक हो, ना भजन करते हो, तो कोई देवालय ना हो लेकिन श्मशान जरूर है, मरना निश्चित है। सर्वतः मृत्यु, तो सब जगह मृत्यु है। फर्स्ट क्लास एसी रूम की व्यवस्था कर देंगे वहां भी, तो कहीं भी कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मृत्यु नहीं है। और कभी भी कहीं भी और कभी भी ये भरोसा नहीं है कि कब मरना है। सर्वतः का अर्थ कहीं भी और कभी भी किसी समय। इसीलिए तो हिरण्यकश्यपु बुद्धि लगाया, न दिन में न रात में न घर में न बाहर न धरती पर न आकाश में, कहीं न मरे। उसको पता था कि सर्वतः मृत्यु है, तो सब जगह बुद्धि लगाया, कहीं प्लेन दुर्घटना न हो जाए, कहीं ट्रेन दुर्घटना न हो जाए, कहीं धरती पर कोई न मार दे, कोई जीव जंतु न मार दे। आपकी सृष्टि में किसी जीवों से नहीं, ब्रह्मा जी से बाउंड बनाया। तो कहते कभी रात में लोग मरते हैं, कभी दिन में, तो कहा न रात में न दिन में, अब कहां मरेगा। वो अपनी बुद्धि लगा लिया, कहा कि न दिन में मरू न रात में। कभी कभी सांप बिच्छू काट देते हैं, कहते हैं कोई जीव से न मरू, आपके शिष्ट किसी पदार्थ से नहीं, किसी जीवों से नहीं, न सूखा से न गीला से, किसी से नहीं। कभी कभी लोग तेजाब वेजाब फेंक देंगे, उससे भी हो सकता है मृत्यु। कभी तो वो कहा न सूखा से न गीला से, बहुत बुद्धि लगाया। वो जानता था कि कहीं भी मृत्यु हो सकती है, सर्वतः मृत्यु, सब जगह मृत्यु है और सभी काल में है। तो सर्वतो मृत्यु, कभी भी मरने का चांस है, इसलिए प्लानिंग मत करो कि बाद में भजन करेंगे। और फिर भजन करना क्यों जरूरी है, तो कहते हैं वो भजन मुकुंद का करना है, उपास्यम मुकुंदम चरणाम्बुजम। और उपास्य अमरोतमयी, जिनकी उपासना बड़े बड़े देवता कहते हैं, अमरों में जो उत्तम है, अमर मन देवता, उत्तमयी का मतलब शिव ब्रह्मा जम कुबेर इंद्रादि बड़े बड़े देवता, जिनकी उपासना ही ऑर्डिनरी थर्ड क्लास के लोगों की बात नहीं कर रहे, जितने हाई क्लास के द बेस्ट क्लास के लोग हैं वो उनकी उपासना करते हैं। शिव जी उनकी उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी उपासना करते हैं, इंद्र उनकी उपासना करते हैं, साक्षात जगत के सुप्रीम जज जमराज उनकी उपासना करते हैं, इस प्राकृत जगत के सबसे बड़े जज वही हैं, वो भी उनकी उपासना करते हैं, कहते हैं हम उनके सेवक हैं। तो उपास्य अमरोतमयी, जिनकी उपासना बड़े बड़े देवता करते हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो लोग जिनकी उपासना करते हैं। यद भजने मुक्ता नाम अपि इदृश औत्सुक्यम तम को नो नाम न भजेत इत्याह को नन्विति इंद्रवान इति। कहते हैं केवल भजन करने के लिए इंद्रिय चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इंद्रियों का होना ही कृष्ण भजन की सबसे बड़ी योग्यता है, बस केवल इंद्रिय रहना चाहिए। और उसे व्यक्ति ठीक से सुन सके, बोल सके, देख सके, चल सके, गिरिराज की परिक्रमा कर सके, बस पैर ठीक से काम कर रहा है ठीक, यह है भजन की। जैसे भजन करने वाले लोग को एक दो इंद्रिय कम पड़ जाता है। गोपियां जब देखती थी श्री कृष्ण को तो कहती थी कि ब्रह्मा इतना मूर्ख है कि हम लोगों को दो आंख दिया, ये भुवन सुंदर ये सौंदर्य निधि का दर्शन करने के लिए दो आंख कम पड़ रहा है। दूसरी कहती है अरे दो दिया तो वो भी ठीक से कहां दिया, बार बार पर्दा लगा देता है, पलक गिर जाता है, बांके बिहारी के तरह पर्दा गिरता रहता है, कहां से ठीक से दर्शन हो रहा है। तो कहते हैं सखी वास्तव में मूर्ख है, एकदम डल माइंडेड है। तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि वो कैसे बुद्धिमान होगा, तुम उसके बाप के विषय में जानती हो, वो कमल से उत्पन्न हुआ है, कमल कौन, वो निर्जीव पदार्थ है, वो चेतन थोड़े है, जिसका बाप ही निर्जीव है, बुद्धिहीन है, तो बेटा कैसे चालाक हो जाएगा, वो मूर्ख है, ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है। कम से कम ब्रजवासियों की आंख पर पर्दा नहीं होना चाहिए था, चाहे कम से कम 10-10, 20-20 हजार आंख देना चाहिए था कि ठीक से देखें। हम तो देख ही नहीं पाई, आपस में बात करती हैं कि अभी अभी प्रियतम श्याम सुंदर गए, हमारा मन तो उनके मोर पंख से नीचे उतरा ही नहीं मुकुट पर, कोई कहीं हम तो अचानक ललाट देखी, नीचे तो देख ही नहीं पाई, जहां एक बार दृष्टि पड़ जाती थी वहीं लोग अटक जाते थे। सब कुछ सुंदर था, सर्वांग सुंदर, अगर कोई उनके अधरों पर मुस्कुराता हुआ स्मित मुस्कान देख ले तो अब आगे देख ही नहीं पाता। तो यह सौंदर्य निधि को देखने के लिए दो आंख कम पड़ जाता था। जब कथा सुन की महिमा पृथु महाराज समझे तो भगवान सामने आए तो कहे कि हे प्रभु, अगर कुछ आप देना चाहते हैं, अब वरदान शिरोमणि हम जानते हैं, लेकिन ये सब विषय भोग तो सुअर और कुकर भी भोगते हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमको 10,000 कान दीजिए आपकी कथा सुनने के लिए। दो कान कम पड़ रहा है, 10,000 कान चाहिए, भगवान उनको दिए। ठीक है तथास्तु। प्रश्न होता है कि सारे देह में कान ही फिट कर दिया गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, दो ही कान में 10,000 कान की क्षमता दे दी गई। वो संसारिक चर्चा के समय ऑफ हो जाता था और कृष्ण कथा के समय ऑन, एक एक शब्द पकड़ता था कृष्ण कथा की, और संसारिक वार्ता के समय एकदम बहरा हो जाते, सुनाई ही नहीं देता था कौन क्या बात कर रहा है। तो इस प्रकार भक्त लोग जो भक्ति किए हैं उनको अनुभव है कि इंद्रियों का होना बहुत जरूरी है। जो गिरिराज जी की परिक्रमा एक दिन में दो दो बार किया है आनंद के साथ जप करते हुए बिना गप के, उसको पैरालिसिस हो जाए तो क्या बेचारा दुखी होगा, क्या सोच सकता है। आ एक दिन ऐसा था कि हम दो दो बार परिक्रमा करते थे, आज चल नहीं पा रहे। तो इंद्रिय होना बहुत जरूरी है। और यहाँ मुकुंद चरणाम्बुजम का अर्थ है अपने कल्याण के लिए मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद का भजन करना चाहिए, उनके भजन से ही सर्वविध सुख मिल सकता है। मुकुंद का अलग अलग अर्थ है, सर्व दुखहारी मुक्ति ददातिम यह मुकुंद, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मुक्ति है, मुक्ति के केवल एक वैरायटी नहीं है। कोई रोग से ग्रस्त है तो उसके लिए मुक्ति है, भगवान हमको रोग से मुक्त कर दो, इस शुगर डायबिटीज से मुक्त कर दो, बड़ा दिक्कत हो रहा है, उसके लिए यही मुक्ति है, रोग से मुक्त होना है। कोई अचानक किसी केस में कारागृह में चला गया तो उसके लिए यही मुक्ति है, हम जेल से निकल जाए। अलग अलग संसारिक बाधाओं के लिए मुक्ति, संसारिक बाधाओं के लिए लोग मुक्ति के अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। कुछ लोग संसारिक विषयों का इतना चिंतन करते हैं कि हे प्रभु ये पारिवारिक झंझट और जिम्मेवारियों से मुझे मुक्त कर दो, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सप्तज भजन करो दिन राति, ये कहाँ फंस गया इस घर गृहस्थी में, मुझे मुक्त करो। और गोपियों का मुक्ति दूसरे ढंग का था, कम से कम कुछ तो फुर्सत दो कि तुमसे हटाकर हम अपने संसार में भी कभी मन लगा सके, कभी भोजन भी तो पकाने भर टाइम दो। भोजन पकाने चलती है तो बंसी बजा देता है, अब मन उस भोजन में लगता है, और एक एक ही दुर्दशा नहीं, तुम्हारे बंसी की आवाज सुनकर लकड़ियां गीली हो जाती है, जड़ पदार्थ हो आग ही बुझ जाता है। मन मैं मन बनाती हूँ, गोपियां कहती हम लोग मन बनाती हैं कि बच्चे के ठीक से स्नान कराएं, खिलाएं पिलाएं, अपने भाई का माता पिता की सेवा करें, कर ही नहीं पाता, मन लगे तब तो करें। तो कम से कम तुम अपने स्मरण से हमको मुक्ति दिलाओ, तुम्हारा स्मरण न कर पाए इसके लिए हमारे ऊपर कृपा करो। सारी दुनिया परेशान है कि संसार से मन हटकर भगवान में लगे, और गोपियां परेशान थी कि हमारा मन तुमसे हटकर संसार में लगे, हो ही नहीं रहा था। यह है लोक धर्म लज्जा इत्यादि से उनको कोई मतलब नहीं था। ये सब कृष्ण करते हैं मुकुंद, अतः मुकुंद का भजन करना चाहिए। बड़े बड़े लोग करते हैं श्री कृष्ण की उपासना, बड़े बड़े लोग करते हैं, और करना इसलिए जरूरी है। सर्वतः मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सब जगह मृत्यु है, सब जगह मृत्यु है, कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए बड़े बड़े देवता इनकी उपासना करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो उपासना करते हैं। तो भगवान के विषय में सुनना देखना सब तरह से नारद जी इसके लिए आते थे द्वारिका में, भगवान का दर्शन होगा। वहां बड़े बड़े संत दुर्वासा वशिष्ठ अंगिरा पुलह क्रतु विश्वामित्र जैसे लोग वहां उपस्थित होते थे, तो कृष्ण चर्चाएं होती रहती थी। कभी उन संतों के बीच में कृष्ण स्वयं उपस्थित होते थे। तो इस तरह हम कृष्ण की चर्चा करने को मिलेगा, इसके लिए नारद जी आया करते थे। बहुत सारे चीज कहने के लिए है इस श्लोक पर, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के बिना भजन करने वाले भक्तों को बहुत अद्भुत जगत लगता है। शून्य आयतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लगता है गोपियों के लिए। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव क्यों राखे नयन, सुमिर सुमिर गुण अधिक तपत है सुनत तुम्हारे बैन, तुम क्यों चर्चा कर रहे हो उसकी। सुनने के बाद मन में आता है कैसे देख लें, और ये संभव नहीं है, मथुरा चला गया आ ही नहीं रहा है। तो तुम्हारे बदन चंद्र के लिए हमारे आंखें चकोर है, तरसती रहती है, हम देखना चाहते हैं और आतुर है, एक एक चीज याद हो रही है। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी आकर कहने लगे तब उनको याद आ रहा था, पहले से ही याद आ रहा था। सकल लोक शून्यो लागत है बिनु देखे वह रूप, शून्य आयतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो सूर्यदास प्रभु नंदन के नकसिख अंग अनूप, सब चीज याद आ रहा है, केवल उनका रूप ही याद नहीं आ रहा है, यहाँ का सारा वातावरण दुखद है। जमुना पर जाती हैं तो वहां भी कृष्ण का याद आता है, गलियों में चलती हैं वहां भी याद आता है, जहां गोवर्धन में जाए वहां याद आता है, बंसी वट पर याद आता है, गायों को देखने पर याद आता है, सुबह में गाय जब चलने जाती है तब भी याद आता है, लौटती है तब भी याद आता है। अपने छोड़ो दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर में जाती हैं तो वहां भी याद आता है कि यहाँ इस छीके पर से माखन निकाल कर खाता था अपने सखाओं के साथ, हर समय कृष्ण का ही याद आता है। तो यह है सिद्धांत, यह है सुख सिद्धांत। सुखदेव गोस्वामी का सिद्धांत क्या है कि भजन के लिए इंद्रियवान होना बस इतनी ही योग्यता है और कुछ नहीं। तो करें इंद्रियां कभी भी ऑफ हो सकती है, ये भी है, सर्वतः मृत्यु ही नहीं, इंद्रियों पर भी कोई भरोसा नहीं कब काम करना बंद कर देगी। अभी आग से दिखाई दे रहा है, कुछ दिन के बाद चश्मा लग जाता है, कुछ दिन चश्मा से भी काम नहीं करता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, इस प्रकार के भजन शीघ्र करना चाहिए। जहां भी भजन करने की बात कहा गया है भागवत में, वहां शीघ्रम, आशु, तुरणम, त्वरित, यही कहा गया है। जल्दी भजन कीजिए, ज्यों समझ में आया त्यों भजन कीजिए। प्लानिंग में नहीं रहना चाहिए। तुरणम यतेत न पतेत, जल्दी जल्दी अनुमृत जावत, जब तक मृत्यु ना आ जाए उसके पहले भजन कर लेना चाहिए। जब तक बुढ़ापा के रोग से ग्रसित ना हो जाए तब उसके पहले भजन कर लेना चाहिए। यह आगे भगवान एकादश स्कंद में, इसी स्कंद में आगे कहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मया नुकूल नभस्वते रितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मा। हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर ये आदि है, जंक्शन है, यहाँ से सभी प्लान सभी लोगों के लिए प्लेन खुलती है। जैसा आप कर्म किए हैं उधर के लिए, ऊपर के लोगों के लिए, मध्य लोगों के लिए, नरक के लिए भी, इसलिए आदि कहा गया है। यहाँ आदि जंक्शन है, यहाँ से ही शुरुआत होता है। मनुष्य जीवन कर्म जोनी है, यहाँ हमारे हर एक कर्मों को काउंटिंग किया जाता है, लेकिन छिपकली फतिंगे खाती है उसका काउंटिंग नहीं होता है। बाघ किसी पशु को मार कर खाता है वो काउंट नहीं होता है, यद्यपि वो हिंसा है लेकिन नहीं। जैसे हमारे द्वारा गेहूं चावल खाए जाते हैं इसका काउंटिंग नहीं होता, वो भी जीव है, लेकिन हमारे कर्मों का काउंटिंग होता है जो हम काम करते हैं। तो हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा लोग, बुरा कर्म करेंगे तो नरक आदि लोग। तो इस प्रकार आदि शरीर है, निर्देह माध्यम सुलभम, सुलभ हो गया, मिल गया है। सुदुर्लभम, ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से मिला है, बड़ी कठिनाई से मिला है। 84 लाख जोनियों में घूमते हुए मनुष्य शरीर मिला है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, और यह क्या है, पल्लवम, पल्लवम माने नौका, पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, यह फर्स्ट क्लास भवसागर को पार करने के लिए नौका है मनुष्य शरीर। और संयोग से भगवत कृपा से, भगवान कहते हैं मेरी कृपा से कुछ नौका चलाने वाला नाविक मिल गया। नौका फर्स्ट क्लास मनुष्य शरीर है, आँख हाथ पैर सब ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो भवसागर पार करने के लिए फर्स्ट क्लास नौका है। और इसको ड्राइविंग करने के लिए, चलाने के लिए कोई गुरु मिल गया, आध्यात्मिक तत्वेता, तब तो नौका चलना चाहिए। पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और फिर माया नुकूल ने नभस्वते रितम, और जिस दिशा में जाना हो उस दिशा के लिए हवा बह गई। नदी में नौका है, पूरब से पश्चिम जाना है, पूर्वैया हवा बह गई, नाव फर्स्ट क्लास, नाविक फर्स्ट क्लास, हवा भी अनुकूल है, उसी दिशा में जा रहा, तब तो फर्स्ट क्लास नौका नदी पार कर जाएंगे, भवसागर पार करेंगे। कहते हाँ, माया अनुकूल ने नभस्वते रितम, इतनी सारी व्यवस्था के बाद भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, अगर जीव इस भवसागर को नहीं प्राप्त पार करता है तो स आत्महा, वह आत्महत्यारा है, वह अपनी हत्या अपने हाथ से कर रहा है। स आत्महा कहने का मतलब, फर्स्ट क्लास शरीर मिला है, आँख हाथ पैर काम कर रहा है, आध्यात्मिक तत्व को बतलाने वाले गुरु मिल गए, श्रील प्रभुपाद जैसे भागवत प्रवक्ता, संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करने वाले कृष्ण भावना मृत संघ, यह इस्कान जैसा अनुकूल वातावरण मिल गया, हवा, ऐसे भक्त लोग घूम घूम कर आपको इनवाइट कर रहे हैं, ये अनुकूल हवा है, आपके घर तक ये हवा पहुंच रही है, आप आइए। और इसके बाद भी जो भजन नहीं करे वो आत्महत्यारा है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। जो अपनी हत्या कर सकता है वो किसको छोड़ सकता है, सबसे प्रिय अपना शरीर व्यक्ति का है, उसको भी जो सुसाइड करने के लिए तैयार है वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा पापी है। तो जो अपना जीवन अब जान बुझकर भक्ति में नहीं लगाकर विषय में लगाता है वो आत्महत्यारा है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि इसलिए नारद जी आकर भजन करते थे, और केवल नारद जी का ही विषय नहीं है, सबका विषय है। सुखदेव गोस्वामी तुरंत एक वाक्य दो वाक्य में कथा कहे और दूसरे वाक्य में कमेंट्री, यह देखिए स्पेशल प्रसंग है। तो कहते हैं तम एकदा तु देवर्षि वसुदेव गृहागतम अर्चितम सुखमासीनम अभिवादेदम ब्रवीत। एक दिन देवर्षि नारद द्वारिका में रुके हुए थे, वसुदेव जी के महल में चले गए, और वसुदेव जी अपने घर में आया हुआ देखकर देवर्षि नारद का स्वागत किए। वसुदेव गृहागतम आगतम आए हुए, अर्चितम उनका अर्चन किए, अर्चितम सुखमासीनम सुखपूर्वक उनको आसन दिए बैठने के लिए, और इसके बाद अभिवादन करके इदम ब्रवीत यह बोले। वसुदेव जी उनका स्वागत किए, सुख पूर्वक बैठा दिए, उनका जो भी आदर करना, चरण पखालना, माला पहनाना, चंदन लगाना, खाने के लिए कुछ फल फूल देना, सब कुछ कर लिए। इसके बाद अवसर पाकर के प्रश्न करते हैं, वसुदेव वाच। सभी श्लोक पर इतना विलंब नहीं होगा, कुछ श्लोक केवल कथा है, तो कथा को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ सिद्धांत है उसको क्लियर करेंगे। भगवान भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पित्रोरुतम श्लोक वर्तमानाम। वसुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, हे देवर्षि नारद, आपका आगमन देहधारियों के स्वस्ति के लिए है, कल्याण के लिए है, क्योंकि कृपाणानाम, कृपाणानाम का मतलब जो दीन दुखी व्यक्ति है, लाचार, उनके स्वस्थ, उनके कल्याण के लिए है। आप जैसे महात्मा दीनहीन गृहमेधियों के कल्याण के लिए घुमा करते हैं। जथा जैसे पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमानाम, जैसे माता पिता का आगमन बच्चे के कल्याण के लिए होता है। छोटे छोटे बच्चे कभी गुरुकुल में रख दिए जाते हैं, किसी स्कूल में उनको भर्ती कर दिया जाता है, वहीं पढ़े लिखे उनका, और कहीं पिताजी आ गए या माँ आ गए मिलने के लिए, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, क्योंकि उनके आने का अर्थ है कि बच्चा का कुछ विशेष गिफ्ट देते हैं, कुछ लेकर आते हैं, कुछ फल फूल मिठाई कुछ खाने के लिए, स्नेह सौहार्द कम से कम वात्सल्य लेकर तो आते ही हैं। बच्चा बड़ा खुश होता है, तो बच्चे के हित के लिए होता है माता पिता का आगमन। और वैसे ही उत्तम श्लोक वर्तमानाम, जो उत्तम श्लोक के पथ पर जो चलते हैं, ऐसे जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्त हैं, वो किसी के घर पर आ गए तो दीनहीन गृहस्थों का मंगल है निश्चित रूप से। तो इसमें भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। श्रीधर स्वामी कहते हैं यथा पित्रो यात्रा आगमनम अपत्यानाम स्वस्थये मंगलाय, जैसे माता पिता का आगमन बच्चे के लिए स्वस्ति का कारण है, मंगल का कारण है। यथा उत्तम श्लोकस्य वर्त भूतानाम महताम यात्रा कृपणानाम स्वस्थये, यथा भगवत रूपस्य भवतो यात्रा सर्वदेहिनाम स्वस्थये इति। उसी प्रकार आप तो पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस है, आप जैसे व्यक्ति का आगमन निश्चित रूप से कल्याण का द्योतक है। देखिए यह बात ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भगवान के बाप बोल रहा है, वसुदेव जी बोल रहे हैं, बहुत प्रमाणिक ऑथराइज्ड व्यक्ति। साधुओं का आगमन जीवों के हित के लिए है, और इस तरह की बात केवल वसुदेव नहीं, नंद बाबा भी बोले हैं। नंद बाबा के यहाँ एक बार गर्गाचार्य जी आ गए, तो गर्गाचार्य जी के आने पर नंद बाबा क्या बोलते हैं, महद विचलनम निर्णाम गृहणाम दिनचेतसाम और निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। यह श्रीमद् भागवत उत्तम के दसम स्कंद के आठवें अध्याय के चार नंबर का श्लोक है। जब गर्गाचार्य जी आकर कृष्ण बलराम का नामकरण किए, वसुदेव जी ही भेजे थे कि जाइए हमारे दो बच्चे उधर हैं उनका नाम रख कर आइए, तो गर्गाचार्य जी बड़ा गुप्त रूप में गए, ये जादवों के पुरोहित थे। लेकिन नंद बाबा के यहाँ जब पहुंचे तो नंद बाबा उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहते हैं कि महद विचलनम निर्णाम गृहणाम दिन चेतसाम, आप जैसे महद पुरुषों का विचलन आश्रम से निकलकर घूमना फिरना चलना, गृहणाम दिन चेतसाम, हमारे जैसे घर गृहस्थी में आसक्त दीनहीन गृहस्थों के लिए मंगल का कारण है। दिन चेतसाम निशेषाय भगवन, यह केवल कल्याण के लिए है। निशेषाय भगवन, हे भगवान केवल हमारे हित के लिए है। कल्पते नान्यथा क्वचित, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है महात्माओं को गृहस्थ के घर आना। एक बार बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले मतलब 20 साल पहले मुंबई में कोई हाउस प्रोग्राम में एक बार मुझे बोलने का मौका मिला था, तो मैं इस श्लोक की व्याख्या किया। तो एक व्यक्ति कहा कि लेकिन आजकल के महात्मा लोग तो रसीद बुक लेकर चलते हैं। ये निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, केवल हमारे कल्याण के लिए आते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं होता, महात्माओं का कोई अपना निजी प्रोजेक्ट नहीं है, केवल हमारे हित के लिए आते हैं। लेकिन आजकल के महात्माओं में तो यह श्लोक नहीं बैठ रहा है फिट। मैं कहा 100% बैठ रहा है। आपको एक छोटी सी घटना सुनाते हैं। हमारे आचार्य है हमारे गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी, आप लोग नाम सुने हैं, बड़े सिद्ध पुरुष थे जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप का खोज किया। तो जगन्नाथ दास बाबा इधर राधा कुंड में भी रहते थे, शुरू में इधर रहे, बुढ़ापे में अंतिम समय में वो उधर नवद्वीप में रहते थे। तो उनका एक शिष्य था, शरीर झुक गया था, टोकरी में लेकर चलता था, चल नहीं पाते थे तो टोकरी में ले लेकर जहां गंगा स्नान चाहे जहां जाते थे चलता था। तो एक बार की घटना है, तो उन सेवक का क्या नाम था भूल रहा है, बिहारी जो भी, तो एक दिन से लेकर जा रहा था टोकरी में, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो एक सेठ नवद्वीप में अपने दरवाजे पर बैठा था, सिद्ध बाबा को देखा तो एक सोने का 5 रुपये का सिक्का फेंक दिया ऊपर टोकरी में। सिक्का गिरा, बाबा उस सिक्का को उठाए, कहे गिरधारी या जो नाम है उसका, रुको रुको कौन ये पैसा फेंका। तो वो तो देखा नहीं, बेचारा लेकर जा रहा था, मुड़ो और सभी दरवाजे पर पूछो किसने फेंका किसने फेंका किसने दिया। तो लौटे तो सेठ बैठा ही था दरवाजे पर, उसे पूछा गया आप पैसा दिए, तो कहा हाँ, तो उतारो तो नीचे उतारो मुझको, उतरे, कहे क्यों फेंका, बाबा जी पूछते हैं, वह बाबा आप सिद्ध महात्मा हैं, हमारे कमाई को उचित जगह पर लगा देंगे। तो बाबा जी कहे तुम्हारे बाप का नौकर हूं, बेशरम निर्लज, अपना भजन हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे मंगल की हम ठीका लिया हूं, तुम्हारा पैसा लगाते चलूं, पता नहीं कैसे कैसे धन कमाता है, तुम्हारे पैसे को लगाने का ठेकेदार बना हूं, ले अपना पैसा, फेंक दिए। थर 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 कांपने लगा कि सिद्ध बाबा नाराज हो गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, चरण पकड़ लिया, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, तो पता नहीं कौन कौन कर्म करके धन कमाया है, फेंक दिया मेरे पास, अब जब से तुम्हारा पैसा हाथ में लिया टेंशन में पड़ा हूं, इसको करना क्या, इसको कहां लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारा यही काम है। बाबा मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो चलते चलते बाबा कहे सुनो, इस पैसा को किसी गाय की सेवा में गौशाला में लगा देना, मैं नहीं तुमको एक सलाह दे रहा हूं, उचित जगह यह है, गायों की सेवा में लगा देना, या विरक्त महात्माओं को कुछ हेल्प कर देना, बस कहकर चले गए। तो बताइए, बाबा जी कहते हैं कि हम ठेकेदार नहीं हैं, और इस्कान के भक्त आपके बाप के नौकर हैं कि रसीद बुक लेकर जाते हैं घर से, फुर्सत नहीं है कि हम अपने फैक्ट्री को छोड़कर दुकान को छोड़कर जन्माष्टमी मनाने अभिषेक करने जाएं, और वो बेचारे जाते हैं 11,000, 21,000, 51,000 कलश दीजिए, और यहाँ तक कि उसको लेकर जाते हैं भगवान में लगाते हैं, उस अभिषेक में भी नहीं आ पाता है, वो कर्म जड़ वहां फंसा है, उसमें भी नहीं आता है, और इतने दयालु हैं कि अभिषेक करके प्रसाद भी घर पहुंचाने आते हैं। भगवत गीता भागवत का सेट देते हैं, प्रसादी देते हैं, अभिषेक का प्रसादी भी देते हैं, इतने दयालु हैं। और इसके बाद भी कहते हैं कि उनका कोई उनका प्रोजेक्ट है, उनका प्रोजेक्ट यही है कि तुम्हारे जैसे दीनहीन जड़ को भी कृष्ण के सेवा में लगाएं, जो मन में गलत फहमी है यह उनका प्रोजेक्ट है, वो निशेष है, अपना कोई नहीं है। और यहाँ तक जो मन में अहम बना हुआ है ना कि हम लोग श्रीमंत हैं, धनी हैं, लक्ष्मी किसी को नहीं स्वीकार करती है, सबको रिजेक्ट कर दी। समुद्र मंथन प्रसंग में सुनिए, केवल विष्णु को स्वीकार की। जो लक्ष्मी पर कब्जा जमाना चाहता है उसको पति नहीं बनाती है, लक्ष्मी पति नहीं बन सकता, उसकी सवारी करती है, उल्लू बना देती है। समझ में ही नहीं आता कि ये पैसा हम मंदिर में दें सास स्वरूप को प्रचार करने के लिए, कि क्लब में दें, वेश्यालय में दें, या शराब खाने में दें, समझ में नहीं आता इन उल्लुओं को। यह है लक्ष्मी का प्रभाव। वो मत सोचिए कि हम लक्ष्मी पति बन गए, ऐसे उल्लुओं के पास कृपा करके भक्त लोग जाते हैं कि तुम्हारी कमाई जितने परसेंट में भगवान में लगेगा, इसका रिजल्ट क्या होता है जानते हैं? दो बार चार फिर आ गया, जन्माष्टमी आ गई, उसको इतना भी होश नहीं है कि जन्माष्टमी फिर आ गई, अभी तो लेकर गया था, उसके दिमाग में है कि अभी एक दो महीना पहले ले गया। एकदम सत्य घटना बताता हूँ, 86 की घटना है। हम और महामंत्र गए थे, महामंत्र प्रभु यहाँ जुहू में, तो कहे कि चलो एक जगह चलते हैं, वो बहुत पैसा वाला है, उसे लेना है जो नया गुरुकुल बन रहा है इसके लिए। तो पहुंच गए, ये तो अभी तो आप गए थे एक आध दो महीना पहले। अरे सर, एक साल बीत गया। तो कहे अच्छा, एक साल बीत गया। अरे भाई, तुम लोग कितना चाहिए बोलो, जल्दी डिस्टर्ब मत करो। तो कहे ये तो अभी 11,000 का कलश है, ये तो हम जानते हैं आप दे देंगे, लेकिन अभी हमारा गुरुकुल बन रहा है, उसमें हम आपके 1.5 लाख का एक रूम मिले बनेगा, आपके नाम रहेगा उस पर। क्या क्या, तुम 2-4 कागज दे दिए, तुम लोगों को दूसरा काम धंधा नहीं है, समाज के लिए कुछ किया करो। हम तो आपके लिए ही करते हैं ना, तो कुछ सुनाए। और इसके बाद कहा ठीक है, फटाफट चेक, 1.5 लाख का, 21,000 का फटाफट लिखकर 10 मिनट के अंदर हम लोगों को हटा दिया। तो कहे इसको अभी नहीं छोड़ूंगा, इसको दिल्ली मंदिर के लिए भी इसे पैसा लेना है। और उस अभिषेक में भी नहीं आया, जन्माष्टमी को उस साल मैं वहीं रुका था, नहीं आया। तो मैं पूछा कि वो आया अभिषेक में? अरे वो थोड़े आएगा, वो पैसा दे दिया इतना ही काफी है। तो बाद में जब दिल्ली में एक बार उनसे पूछ दिया उसी के विषय में, 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद मैं पूछा कि वो क्या हुआ, उसका कुछ मंगल हुआ? तो कहे अरे एक साल आ गया अचानक अभिषेक में, अभिषेक में आ गया, नौकरों को भेजता था, कभी हम लोग प्रसाद देते थे, आया तो अब भाई उसका VIP ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ा। तो दिखा तो कहा अच्छा, इतनी लंबी लाइन है, वो तो गेट में ही, वो तो उसके पास तो दिया गया था कार्ड, आ गया VIP तुरंत, लंबी लाइन जू में इतना। और फिर उसको घुमाया, देखिए यहाँ प्रसाद मट रहा है, यहाँ भक्त लोग लीला कर रहे हैं, यहाँ प्रवचन हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रथम बार रास बिहारी मंदिर में आया। और वो जल्दी जल्दी में आते ही कहा कि हम 10 मिनट में निकलेंगे, 2-2.5 घंटा रुका। देखते देखते कहा कि भाई आप लोग तो बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, आप आइए फुर्सत में, 2-3 दिन के बाद आइए, मैं समझ गया आप लोग अच्छा करते हैं। वो 7 करोड़ रुपया दिल्ली मंदिर के लिए दिया है, 7 करोड़ रुपया दिया। तो कहे कि इस तरह से वो देने की प्रवृत्ति जगा दिया गया और भगवत गीता पढ़ने लगा, सुनने लगा, फिर जब बुलाया जाता था जो तब आता था। तो इस प्रकार भक्त लोग कृपा करके स्वस्ति करते हैं। निशेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, केवल आप हमारे मंगल के लिए आते हैं, कृपा करके अपना आश्रम छोड़कर हमारे यहाँ पहुँचते हैं। महद विचलनम निर्णाम गृहिणाम दिन चेत शाम, हम तो इसी घर गृहस्थी में ईंट पत्थर में स्त्री बच्चे में, गृहिणाम का अर्थ केवल ईंट पत्थर नहीं है, गृहिणी गृह उच्चते, घर वाली असली घर है, उसमें आसक्त हो जाते हैं। फुर्सत ही नहीं कि हम छोड़कर वृंदावन हरिद्वार जाएं, वो जाने दे तुम ना, एक से एक योजना बना हुआ है, एक काम है वो काम है ऐसा है वैसा है, आप ऐसे घूमते रहेंगे तो कैसे होगा। तो इस प्रकार वो बेचारा जा ही नहीं पड़ता। ऐसे दीनहीन लोगों के लिए, दीन चेतसाम जिसकी बुद्धि एकदम लाचार हो गई है, दीन माने एकदम लाचार, ऐसे लोगों पर कृपा करके आप जैसे महात्मा आते हैं, विशेष कृपा है। नंद बाबा कहते हैं हमारे कल्याण के लिए कल्पते नान्यथा क्वचित न अन्यथा क्वचित, कोई दूसरा कारण नहीं है। उसी प्रकार की बात कहते हैं वसुदेव जी, भगवान भवतो यात्रा, आपका यात्रा स्वस्थे सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों के मंगल के लिए है, खासकर कृपाणा नाम। कृपाणा नाम और दीन चेत साम एक ही अर्थ में है, कृपाण दीनहीन व्यक्तियों के लिए आपकी यात्रा है। उत्तम श्लोक वर्तमानम, जो उत्तम श्लोक के पथ पर चलते हैं भगवान, उत्तम श्लोक कृष्ण का नाम है, जिनके गुणों को सुंदर सुंदर श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो आप कृपा करके आए, बहुत बड़ी आपकी कृपा हुई। तो इसके साथ यहाँ वसुदेव जी 3 उदाहरण दे रहे हैं, नारद जी की यात्रा और माता पिता की यात्रा और उत्तम श्लोक वर्तमानम, किसी भक्तों की यात्रा जो उत्तम श्लोक के पथ पर चल रहे हैं, कृष्ण भावना भावित भक्तों की यात्रा निश्चित रूप से हितकर होता है। और किस प्रकार का हित करते हैं, भगवत कथा सुनाकर जन्म जन्मांतर की जकड़ी हुई आसक्ति को अपनी बाड़ी से काट देते हैं। उनके पास बड़ा तीखा तलवार है आसक्ति को काटने वाला। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद के 26वें अध्याय के लास्ट में, उद्धव जी से जब ऐल गीत पुरुरवा महाराज की उक्ति को सुनाते हैं तो उसमें कहते हैं कि महाराज, उद्धव जी से सुनाते हुए कहते हैं कि देखो उद्धव, ये लोगों के अंदर इतने भाव क्यों आ रहे हैं, जो संसार के बार बार रिपीटेशन होता है, जो देखता है सुनता है वही भाव मन में चढ़ जाता है। अदृष्टाद सुताद भावा नो भाव उपजायते, न भाव उपजायते असंप्रयुंजन प्राण साम्यति स्मितम मन। अगर व्यक्ति सुने न और देखे न तो विचार ही मन में नहीं आएगा। देखने सुनने का जब जिस विषय का रिपीटेशन ज्यादा हो जाता है वही चित्त में छा जाता है। अगर वो बार बार गलत चीज देखता है सुनता है तो गलत चीज की धारणा बन जाती है, अच्छा चीज सुनता है देखता है तो अच्छा चीज की भावना बन जाती है। तो इस तरह तस्मात संगो न कर्तव्य, कर्तव्य है कि वह किसी में आसक्त न हो, खास करके स्त्रीषु चेंद्रियई, खास करके उन लंपटों के में आसक्त न हो जो स्त्रियों में आसक्त है। स्त्रियों से भी खतरनाक स्त्री लंपट है, वो केवल स्त्री चर्चा सुनाते हैं। विदुषान चाप्य विश्रब्ध, विद्वान लोग ऐसे पर विश्वास नहीं करते अपने पर, सद्वर्ग किमु मादृशाम। तो ये पुरुरवा महाराज के उद्गार है। इसके बाद श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोलते हैं पुरुरवा महाराज की बात कहकर, एवं प्रगायन निपदेव देव सव उर्वशी लोक मथो विहाय आत्मान मात्मन्य अवगम्य माम वही उपार अज्ञान विधूत मोह इन सब ज्ञानों को अपने मन में विचार करके पूर्वा महाराज ने उर्वशी का आसक्ति छोड़ दिया। एक कथा कह रहे हैं भगवान उद्धव से, और वो फिर परम पद को प्राप्त किए, भजन किए। तो तत्व दुसंग मुत्सृज, यह बात मैं कहना चाहता हूं, तत्व दुसंग मुत्सृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान। कहते हैं इसलिए दुसंग को छोड़कर बुद्धिमान व्यक्ति को साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। और डल माइंडेड नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग समझते हैं। तो वहां क्या फायदा है साधुओं के साथ संग करने पर? तो संत एतस्य छिन्दन्ती, साधु लोग काट देते हैं किसको? मनोव्यासंग उक्ति भी, जो जन्म जन्मांतर की जकड़ी हुई आसक्ति है, घर से, परिवार से, बैंक बैलेंस से, पद पोजीशन से, मान प्रतिष्ठा से जो आसक्ति जकड़ी हुई है, उस आसक्ति को महात्मा लोग काटते हैं। किस तलवार से? उक्ति भी, अपने प्रवचन से, अपने वाणी से, उक्ति से, उक्ति भी अपने प्रवचनों के माध्यम से उसके आसक्ति को काट देते हैं। इसलिए ऐसे साधु पुरुषों का संग अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जाकर करना चाहिए, और नहीं तो कृपा पूर्वक आ गए तो अवश्य करना चाहिए। और काम बाद में करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण टाइम जाने नहीं देना चाहिए, इनसे कुछ सुनना चाहिए। सुनने पूछने की नहीं जिज्ञासा है, तो जो कह रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार यहां तक तुलना करते हैं कि भूता नाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, सुखाय वही साधु नाम त्वादिशाम अच्युतात्म नाम। कहते हैं महात्माओं का आचरण देवताओं से तुलना नहीं किया जा सकता, देवताओं से मैनेजमेंट संभालने वाले देवता लोग उतना कल्याण नहीं कर सकते जितने भगवत भक्त समर्पित प्रीचर करते हैं। कहते हैं सुखाय वही साधु नाम, साधुओं का आचरण केवल सुख के लिए है, और देवताओं का आचरण कभी दुख के लिए, कभी सुख के लिए। कभी अनावृष्टि, कहीं पानी ही नहीं हो रहा है, धान की रोपनी करना जरूरी है, बिहार उत्तर प्रदेश सूखा है, और बिना मतलब के उत्तराखंड में बाढ़ हो रहा है, यही उन लोगों का मैनेजमेंट है। देखना चाहिए ना कहाँ जरूरत है, कहीं प्रलय मचा रहे हैं और कहीं सूखा डाले हुए हैं, उनको विभाग दिया गया बारिश करने का, तो विचार करके बरसना चाहिए ना। तो सूखा, वो कभी दुखाए च सुखाए च, कभी दुख के कारण हो जाता है उनका आचरण देवचरितम, देव का आचरण देवताओं का, दुखाए च सुखाए च। और सुखाए वही साधु नाम, साधु कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, केवल उसका आचरण सुख के लिए ही होता है। तो आ दिशा अच्युतात्मनाम, जिनका मन अच्युत में, कृष्ण में लगा हुआ है, आप जैसे महात्माओं से किसी को दुख नहीं होता। साधु ते हो ही न कारज हानि, कभी भी साधु से किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं होता, सबका मंगल होता है, उनका काम ही है उपकार करना, वो किसी के व्यवहार से चिढ़ते नहीं है। चक्रवर्ती ठाकुर इस पर भी लिखते हैं, तो अपराध कैसे लगता है नहीं चिढ़ते हैं तो? उनका हृदय किसी के गलती को स्वीकार ही नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, लेकिन सर्वविध मंगल करने वाला जो चरण का रज है वो माफ नहीं करता, वो छिड़ जाता है। जब तक चरण के रज में नहीं आते तब तक माफ नहीं होता। साधु किसी की गलती को लेता ही नहीं। चित्रकेतु महाराज शिव जी पर उंगली उठा लिए, बाबा भोले बाबा ये कौन सा फैशन चालू किए, पत्नी को गोद में लेकर बैठकर कथा कह रहे हैं। एक बार शिव जी अपने कैलाश में बैठे हुए, पार्वती जी जांग पर बैठी हुई थी, बाएं हाथ से पकड़े हुए थे, ध्यान ही नहीं दिए, कुछ महात्मा लोग आ गए, बैठ गए, प्रश्न करने लगे, उत्तर देने लगे शिव जी, वो तो भगवान में मन रम गया, रमता ही था हमेशा, धीरे 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 सैकड़ों लोग बैठ गए आकर, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन किसका हिम्मत की यह कहे कि बाबा पत्नी को तो हटा दीजिए। लेकिन और पार्वती जी को इससे सुखद आसन कहाँ मिलेगा कि वो जाए, आनंद से बैठी थी, शिव जी कुछ मना नहीं कर रहे हैं। उसमें चित्रकेतु नामक एक राजा आ गए, कहे अरे बाबा भोले बाबा, देवों का देव महादेव, ये कौन फैशन चालू कर दिए पत्नी को गोद में लेकर कथा कहने का। वहां देवर्षि नारद अंगिरा पुलह क्रतु वशिष्ठ जैसे लोग बैठे थे, कोई नहीं बोल पाया, वो राजा बोल दिया तो लोग अंगिरा और नारद भी उसके गुरु थे, वो लोग चुप रह गए। तब भगवान शिव को याद आया, देखे मुस्कुराए, और पार्वती जी को क्रोध आ गया, कहती अच्छा बेटा तुमको कौन नियुक्त कर दिया शिव ब्रह्मा की गलती देखने का, अभी गिरो और असुर जोनी प्राप्त करो, श्राप दे दी। चित्रकेतु महाराज कहे माते मेरे कठोर वचनों से आपको दुख लगा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आपके श्राप में कोई कंसेशन नहीं कराने जा रहा हूं, ये मेरे कर्म फल है, मैंने शिव जी पर उंगली उठाया, मुझे भोगना ही चाहिए, कहकर चले गए। शिव जी कहते हैं देख ली भगवान विष्णु के भक्तों की महिमा, अगर ये चाहता तो तुमको अभी श्राप देकर राख बना देता, जला देता, लेकिन भगवान के भक्त किसी के बुराई को स्वीकार ही नहीं करते। कबीर दास जी तो कहते हैं कि कौन अच्छा काम है कि इतना प्रतिपकार में लगे हो, कोई गाली दे दिया तो उसके बदले में दो चार गाली देते हो, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको रिजेक्ट करो ना। गाली अगर अच्छा चीज नहीं है तो उसको एक्सेप्ट क्यों करते हो, और इतना कृतज्ञ हो गए कि बदला में दो चार देने लगते हो। जो चीज अच्छा करा है, जो सूरज का प्रकाश दिया, जो हवा नाकों तक सप्लाई करा है, उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, ध्यान ही नहीं है कि वो कौन कर रहा है, और जो खराब व्यवहार किया उसके प्रति इतना कृतज्ञ हो गए। ऐसा साधुओं को नहीं करना चाहिए, सह लेना चाहिए। तो साधु पुरुष एकदम किसी के गलती को नहीं लेते, प्रतिशोध की भावना नहीं होती, कहते देख लो ये है भगवान के भक्तों की महिमा। भागवत में कई जगह ऐसा आया है, दक्ष जब श्राप दिया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये नारद जी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए चले गए, चाहते तो श्राप दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, इसे साधु कहते हैं, इसको कहते हैं साधुता। यहाँ शिव जी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह चित्रकेतु की साधुता, चुपचाप चले गए। तो इस प्रकार साधु लोग किसी की गलती को लेते ही नहीं, वो देते हैं सुखा यही वही साधु नाम, सुख के लिए व्यवहार करते हैं और अपने स्थिति में बने रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते, केवल भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार भजंती जे जथा देवान देवा अपि तथैव तान, कहते देवता लोग तो जो जैसा भजन करता है उसका बदला चुकाते हैं, वो बनिया गिरी है, छाये वो कर्म सचिवा साधो दिन बत्सला, वे तो कर्म के सचिव हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे, लेकिन साधो दिन बत्सला, कौन क्या कर रहा है इस पर नहीं विचार करते, वो अपना काम करते हैं। जैसे आप सुने होंगे, मैं थोड़ा दोहरा देता हूं, एक साधु नदी में स्नान कर रहा था और उस नदी के धारा में बहता हुआ एक बिच्छू दिख गया, तो साधु सोचा अरे ये तो जलचर प्राणी नहीं है, किसी तरह स्थल पर रहने वाला बिच्छू पानी में आ गया, बेचारा मर जाएगा, तो उसको हाथ से उठाया बाहर फेंकने के लिए, जब ही उठाया तो डंक मार दिया, इतना तेज डंक मारा कि हाथ झनझना गया, फिर दूसरे हाथ से उठाया उस पर भी डंक मार दिया, गिर पड़ा। एक व्यक्ति देख रहा था, कहा रे बाबा किस चक्कर में हो, इसका स्वभाव है डंक मारना, आप इसकी सहायता के चक्कर में पड़े हो, ये अपना स्वभाव थोड़े छोड़ेगा। तो महात्मा दोनों हाथ से पकड़ा और फेंक दिया, कहा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, इसका स्वभाव है डंक मारना और हमारा स्वभाव है सहायता करना, तो अपना स्वभाव मैं नहीं छोड़ सकता, जब ये नहीं छोड़ सकता इतना तुच्छ प्राणी तो मैं साधु होकर क्यों अपना स्वभाव छोड़ दूं, ये है साधुता। छाये व कर्म सचिवा साधो दिन वत्सला, साधु लोग दिन वत्सल होते हैं। तो इस प्रकार कहकर कहते हैं कि ब्रह्मन तथा पिपिक्षाम धर्मान भागवतांस्तव, हे ब्रह्मन हे देवर्षि नारद, मैं आपसे भागवत धर्म के विषय में पूछना चाहता हूँ, यश्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। जिस धर्म को सुनने के बाद जीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, उसको मैं जानना चाहता हूं। तो इस प्रकार वसुदेव जी जब ये प्रश्न किए तो नारद जी को याद आ गया कि चलो मैं नव जोगेश्वरों और निमि महाराज का संवाद यहां प्रस्तुत कर देता हूं। तो फिर वसुदेव जी के प्रश्नों के उत्तर में नारद जी ने निमि महाराज और नव जोगेश्वरों के संवाद को प्रस्तुत किए हैं। अब समय हो गया, उसको कल कहेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आप समय से आएंगे 7:30 बजे तो आप 2 घंटा कथा सुन सकते हैं। तो आज बिला